आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशु शाह जी। जैसा कि आप अभी तक जान चुके होंगे, मैं पढ़ती हूँ बनस्थली विद्यापीठ में और अभी अपनी ग्रेजुएशन के आखिरी साल में हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी, उसमें पाठ 9, जिसका नाम है हमारी धरोहर तीर्थराज मचकुंड। जैसा हमने कल पढ़ा था कि मचकुंड जगह है जहाँ पे बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे घाट और बहुत सारे लोग भी हैं। और हमने जब मचकुंड की कहानी पढ़ी थी कल, हमारा जो मचकुंड है जगह, वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि वह एक बहुत पुराने काल से मौजूद है। इतने पुराने काल से कि वहाँ पे हमारे कृष्ण जी और हमारे मचकुंड महाराज ने एक दूसरे को दर्शन दिए थे। तो हम थोड़ी सी कहानी जो हमने कल पढ़ी थी इस जगह के बारे में कि यह जगह इतनी ज्यादा प्राचीन और इतनी ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है, थोड़ी सी याद करेंगे। हमारी जो कल की कहानी थी, उसमें सबसे पहले हमने यह देखा कि हमारे जो इंद्रदेव थे ना, उन्होंने मचकुंड महाराज को अपना सिपाही बनाया युद्ध में जो हुआ था देवताओं और दानवों के बीच में। लड़ते 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 हमारे देवता युद्ध जीत गए। अब हमारे मचकुंड महाराज इतने ज्यादा थक गए थे लड़ लड़ के कि उन्होंने एक गुफा है जो है श्यामाचल पर्वत पर, वहाँ पे जाके विश्राम किया और उनको वरदान मिला हुआ था कि उनको जो भी उनकी नींद से जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। तो एक दानव हमारे कृष्ण जी को परेशान करने के लिए या हमारे कृष्ण जी से बदला लेने के लिए आते हैं मथुरा में। वो दानव को वरदान मिला हुआ होता है देवताओं से कि उस दानव को कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो हमारे कृष्ण जी भाग जाते हैं वहां से और भागे 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 जाते हैं श्यामाचल पर्वत के उस गुफा में जहाँ पे हमारे मचकुंड महाराज सो रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने मचकुंड महाराज पर अपना कोई औजार रखा तो मचकुंड महाराज की नींद खुली। जो दानव कृष्ण जी का पीछा करते 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 भाग भाग के आ रहे थे, उन्होंने मचकुंड महाराज को कृष्ण जी समझ के ललकारा। तो हमारे मचकुंड महाराज उठे और पहली नजर डाली दानव पे, दानव भस्म हो गया वहीं पे। फिर हमारे जो कृष्ण जी पीछे छुपे हुए थे, उन्होंने विष्णु के रूप में हमारे मचकुंड महाराज को दर्शन दिए और उनकी सहायता की उनका एक प्रश्न हल करने में। तो ये तो थी हमारी कल की कहानी। कल की कहानी के साथ साथ आज हम शब्दार्थ भी थोड़ा याद करेंगे कि हमने कौन कौन से शब्द पढ़े थे। तो आप बच्चों आओ पेज नंबर 47 पे पीले डब्बे में देखिए और इस बार आपको सिर्फ मन में वो शब्द दोहराने हैं। तो आपका पहला शब्द है सकंद, जिसका अर्थ है भाग। आपका दूसरा शब्द है दृष्टि, जिसका अर्थ है नजर। आपका तीसरा शब्द है दैत्य, जिसका अर्थ है राक्षस या दानव। आपका चौथा शब्द है विग्रह, जिसका अर्थ है प्रतिमा या मूर्ति। आपका अगला शब्द है संग्राम, जिसका अर्थ है लड़ाई। आपका अगला शब्द है भस्म, जिसका अर्थ है राख। आपका अगला शब्द है ज्वाला, जिसका अर्थ है अग्नि या फिर आग। तो आज हम पढ़ना शुरू करेंगे पेज नंबर 45 की आखिरी लाइन जो है, मचकुंड पर अपूर्व प्राकृतिक घटा से युक्त पवित्र सरोवर। तो सब लोग अपनी किताब में देखिए, हम इस लाइन से पढ़ेंगे। मचकुंड पर अपूर्व प्राकृतिक घटा से युक्त पवित्र सरोवर के किनारे मंदिरों का निर्माण ढोलपुर रियासत के शासक महाराज भगवंत सिंह के काल में हुआ। यह स्थान धार्मिक आस्था, पवित्र स्नान तथा कौमी एकता के लिए जाना जाता है। यह प्रत्येक माह की पूर्णिमा को दीपदान व महाआरती का आयोजन किया जाता है। तो इन लाइनों में हम देखते हैं बच्चों की, ये तो हमने पढ़ा था पहले जो हमारे मचुकुंड की कहानी है, तो अब हम पढ़ेंगे आज के समय का जो मचुकुंड है वहाँ पे क्या क्या है। तो इन तीनों लाइनों से हमें समझ में आता है कि मचुकुंड एक प्राकृतिक घटा पर बना हुआ है जहाँ पे पौराणिक मंदिरों का निर्माण हमारे एक शासक या फिर राजा ने किया था जिनका नाम था महाराज भगवंत सिंह। वहाँ पे हमारे जो मचुकुंड है वहाँ पे धार्मिक आस्था, नान तथा कौमी एकता के लिए वह बहुत प्रसिद्ध है, यानी धार्मिक जो कार्य होते हैं उनके लिए। और जो हम पवित्र पानी या पवित्र जल में स्नान नहीं करने जाते बच्चों, उसके लिए। और कौमी एकता का मतलब वहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग आके एक साथ प्रार्थना करते हैं और एक साथ रहते हैं। तो यह जगह इन तीनों चीजों के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे यह भी होता है कि प्रत्येक माह की पूर्णिमा में या फिर हर महीने की पूर्णिमा में दीप चढ़ाए जाते हैं, यानी दीपक चढ़ाए जाते हैं, जो हम दिवाली पे नहीं जलाते दिए वो चढ़ाए जाते हैं जल में। और एक महाआरती होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग एक साथ मिलके घाट के पास में पूजा करते हैं। हमारी अगली लाइन है अमावस्या को परिक्रमा का आयोजन। हम इस लाइन से पढ़ेंगे तो सब लोग अपनी किताब में ध्यान दें। अमावस्या को परिक्रमा का आयोजन धार्मिक आस्था और संस्कृति को साकार कर देती है। यह प्रतिवर्ष भद्रपद शुक्ल छठ को वार्षिक मेला भरता है। इस मेले में श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं व शादियों की मोरछड़ी व कलंकी आदि का विसर्जन करते हैं। इस पवित्र कुंड में कुल 40 घाट है। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म योग समाप्त हो जाता है। इस स्नान को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इस कुंड के आसपास अनेक हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारे तथा निकट पहाड़ी पर मौनी बाबा की गुफा व अब्दुल शाह के मजार हैं। तो बच्चों हम अगली लाइन में यह देखते हैं कि यहाँ पे हर साल एक, जैसे हमने कहानी में पढ़ा नहीं था कि हमारे जो मचुकुंड महाराज थे उन्होंने अगले दिन, उनके सवाल का जवाब मिलने के बाद अगले दिन उन्होंने एक भोजन का आयोजन किया था। तो आजकल भी बच्चों वहाँ पे भोजन का आयोजन होता है परंतु मेले के रूप में। उसका भी नाम लोगों ने भद्रपद शुक्ला छठ रखा था जो उस समय पे हमारे मचुकुंड महाराज ने रखा था। अब यहाँ पे सिर्फ जो हमारे लोग होते हैं ना वो सिर्फ स्नान करने नहीं आते, क्योंकि हमारे भारत में मान्यता है कि अगर आप गंगा मैया में या यमुना मैया में या फिर आप किसी भी पवित्र जल में स्नान कर लोगे तो आप के सारे पाप धुल जाएंगे और आपके सारे जीवन के संकट चले जाएंगे। तो लोग यहाँ पे सिर्फ स्नान करने नहीं आते, जैसे किसी की शादी है तो उनकी पत्री या फिर कोई खुशखबरी है तो वो वाली साधन का एक भाग पानी में समर्पित करने आते हैं ताकि उनका जो कार्य है अच्छे से कुशल मंगल और सफल बीते। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि सिर्फ यही नहीं, यह भी माना जाता है कि अगर इन घाटों के पानी में कोई स्नान कर ले या फिर उस पानी को कोई छू पी ले तो जो चर्म रोग होता है वो ठीक हो जाता है, यानी जो हमारी चमड़ी में रोग होता है जिसके वजह से हमारी चमड़ी में या फिर स्किन में बहुत अलग अलग तरीके की परेशानी आ जाती है, जैसे कभी कभी हमारी चमड़ी सूज जाती है, कभी फटने लगती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, वह सारे रोग ठीक हो जाते हैं। ये तो सारी मान्यता है, पर अब थोड़ा सा उस जगह के बारे में जाने। वह जगह उस कुंड में यानी मच कुंड में हमारे 40 घाट है। और यही नहीं कि इसीलिए भी इसीलिए भी मच कुंड को तीर्थों का भांजा कहा गया है, यानी यह एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे घाट है और बहुत सारे मंदिर है। तीर्थ स्थान का मतलब होता है बच्चों कि जहाँ पे बहुत सारे घाट हो और बहुत सारे मंदिर हो। अब सिर्फ यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं, परंतु यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है और थोड़ा ऊपर पहाड़ी पे जो हमारी मौनी बाप्पा की गुफा नहीं थी वो है, और उसके थोड़ा बगल में हमारी एक मजार यानी मस्जिद भी दिखती है हमको। तो यह तीर्थ स्थल तो है, परंतु यहाँ पे मंदिर के साथ साथ गुरुद्वारे भी है और मस्जिद भी है। तो हम देखते हैं कि जहाँ पे सिर्फ मंदिर होने चाहिए वहाँ पे हर चीज है। ऐसे ही हमारी देश की संस्कृति है जहाँ पे अलग अलग चीजें अलग अलग लोग एक साथ रहते हैं एकता के साथ और एक दूसरे के साथ मिलके इस देश को सुंदर बनाते हैं। तो बच्चों ये तो है हमारी जगह, तो ऐसी बहुत सारी जगह जानते होंगे चाहे आप गए हो या नहीं गए हो जहाँ पे मंदिर के साथ साथ मस्जिद भी हो और गुरुद्वारे भी हो। आपका तो नहीं पता पर मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ पे मैं अक्सर जाती रहती हूँ। वहाँ पे एक मस्जिद है, उसके कुछ 10 मीटर दूर पे एक हमारा मंदिर पड़ता है। तो आप खुद सोचिए ऐसी जगह जहाँ पे आपने गए हो या आपने चित्रों में देखा हो या मूवीज में देखा हो पिक्चरों में देखा हो, तो आप याद करिए और आप यह सोचिए कि आप जब उस जगह पे थे या फिर आप उस जगह को देख रहे थे समझ रहे थे या शायद आप अंदर भी गए हो, तो आपको महसूस कैसा हुआ, कैसा लगा जब आपने देखा कि इतने अलग लोग इतनी अलग जगह इतने अलग प्रार्थना स्थल एक ही जगह पे एक दूसरे के साथ इतनी एकता के साथ कैसे रह रहे हैं? आपने जरूर सोचा होगा, मैंने तो सोचा था। तो इसी के साथ हम आगे अपना पाठ शुरू करते हैं जो है अगली लाइन हमारी, यहाँ बने मंदिरों में रानी गुरु मंदिर। इस लाइन से हम पढ़ेंगे तो सब अपनी किताब पे ध्यान दें। यह बने मंदिरों में रानी गुरु मंदिर, लाडली मोहन मंदिर तथा राजगुरु मंदिर विशेष महत्व के हैं। इन मंदिरों में लाडली मोहन मंदिर काफी प्राचीन है। इसकी स्थापना 1899 में राज खजाने से की गई थी। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा समझेंगे कि वहाँ पे जो इतने सारे मंदिर हैं, उनमें से कुछ मंदिरों का नाम और उसमें से एक मंदिर की विशेषता। तो वहाँ पे जो इतने सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों के नाम हैं कुछ कुछ राजगुरु मंदिर, लाडली मोहन मंदिर और रानी गुरु मंदिर। सारे मंदिरों में से यह तीन बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अब हमारा सबसे प्राचीन मंदिर जो है वो है हमारा लाडली मोहन मंदिर, जो बना था हमारा 1899 में खजाने रखने के लिए, यानी हमारा जो राज खजाना नहीं होता था उस समय का, इतने सारे सोने के सिक्के इतने सारे चांदी के सिक्के इतने सारे कपड़े, उसको रखने के लिए हमारा लाडली मोहन मंदिर बना था और यह सबसे प्राचीन है। अब यह सबसे प्राचीन है हम पढ़ेंगे अगली लाइन में जो है, धौलपुर के लाल पत्थर से जड़ित यह मंदिर। हम इस लाइन से पढ़ेंगे तो सब अपनी किताब में ध्यान दें। धौलपुर के लाल पत्थर से जड़ित यह मंदिर शिल्प कला व नक्काशी का सुंदर नमूना है। इसके चौक के मध्य 7 फीट ऊंची एक अष्टकोण में एक शिवालय है। यह प्राचीन शिवलिंग के अलावा हनुमान, राम, जानकी व बलराम की मूर्ति विराजमान है। तो हम यह देखते हैं कि यह जो हमारा सबसे प्राचीन मंदिर है ना, लाडली मोहन मंदिर, वह इतना प्राचीन है कि उसमें शिल्प कला यानी एक बहुत प्राचीन कला है और नक्काशी यानी हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों की देन है नक्काशी, एक कला है वो। उन दोनों के मेल से एक बहुत सुंदर नमूना हमको दिखता है उसमें। उसमें जो बीच में चौक पे एक 7 फीट की शिवलिंग है, और शिवलिंग ही नहीं, एक हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, जानकी जी की मूर्ति और बलराम जी की मूर्ति हमको दिखती है वहाँ पे। अब है अगली लाइन हमारी, राजगुरु मंदिर की स्थापना रियासत काल में महाराज भगवान सिंह ने करवाई थी। हम इस लाइन से पढ़ेंगे तो सब लोग अपनी किताब में ध्यान दें। राजगुरु मंदिर की स्थापना रियासत काल में महाराज भगवान सिंह ने करवाई थी। मंदिर में जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के विग्रह सुशोभित है। मदन मोहन मंदिर इस सरोवर के आग्नेय कोण में स्थित है। इस मंदिर को रानी गुरु मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह सिख धर्म विज्ञों का एक गुरुद्वारा है, जिसे दातावंती छोड़ चेर शिखर गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि 4 मार्च 1612 में सिखों के छठे गुरु हरिगोविंद सिंह ग्वालियर जाते समय यह एक दिन ठहरे थे। गुरुद्वारे में भजन कीर्तन व लंगर का आयोजन होता है। अब बच्चों, हमें इन लाइनों में समझ में आता है कि यह जो हमारे मंदिर है, जो राजगुरु मंदिर है, जो हमारा रानी गुरु मंदिर है, जो हमारा लाली मोहन मंदिर है, वह बनाया गया था महाराज भगवंत सिंह द्वारा। यहाँ पे इन मंदिरों में जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी की मूर्तियां रखी हुई है। तो हमारे जो इतने पुराने मंदिर है, वह बनाए गए थे एक बहुत प्राचीन काल में, जब हमारे यहाँ पे राजा राज करते थे। तो उस प्राचीन काल में एक राजा जिनका नाम था महाराज भगवंत सिंह, उन्होंने बनाया था। अब इन मंदिरों के पास में ही एक गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे होते हैं सिख धर्म के लोगों के, एक सिखों का गुरुद्वारा है जिसका नाम है शेर शिखर गुरुद्वारा। वहाँ पे यह माना गया है कि जो सिखों के छठे गुरु नहीं है, जिनका नाम है हरगोविंद सिंह, वहाँ पे जब वो ग्वालियर जाने वाले थे, तब वो उस गुरुद्वारे में रुके थे। अब हमारे, अगर आप कभी गुरुद्वारे गए हो तो आपको पता होगा कि गुरुद्वारे में भजन कीर्तन होता है और वहाँ पे लंगर लगता है। लंगर यानी सामूहिक खाना, जहाँ पे कोई भी धर्म का आदमी किसी भी वेश में आके खा सकता है और कोई उसको रोकता नहीं है, और सब लोग उसे बड़े ही प्रेम से खाना खिलाते हैं, अपना समझ के सब खिलाते हैं। और यहाँ पे कोई नहीं देखता कि आप ईसाई है, आप हिंदू है, आप मुसलमान है, आपको इंसान माना जाते हैं और आपको उस इज्जत से खाना खिलाया जाता है। मैंने यह इस पार्ट में देखा है कि जो हमारा मचकुंड है ना, भले ही एक हिंदू तीर्थ स्थल है, परंतु वहाँ पे सिर्फ हिंदू लोग ही नहीं है, परंतु वहाँ पे मुसलमान भी है, सिख लोग भी है, और हमारे हिंदू तो है ही, और वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ प्रेम से, एकता से रहते हैं, मिलजुल कर बांटते हैं, मिलजुल कर खाते हैं। ऐसे ही बच्चों, हमें भी अपना जीवन गुजारना चाहिए, भले ही कोई हमसे कितना ही अलग क्यों ना हो, कोई हमारे धर्म का क्यों ना हो या फिर नहीं भी हो, है तो व्यक्ति ही ना, है तो हमारे जैसा व्यक्ति ही ना, हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमेशा उसकी सहायता करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे इसी के साथ अगली लाइन, जो है, मचकुंड के पास एक पहाड़ी पर अब्दुल शाह रहमतुल्ला, इस लाइन से, तो सब अपनी किताब में ध्यान दें। मचकुंड के पास एक पहाड़ी पर अब्दुल शाह रहमतुल्ला अले सूफी संत की मजार है। पहाड़ी पर मौनी बाबा की गुफा भी है। जन ऋतु है कि अब्दुल शाह व मौनी बाबा की एक बार भेंट हुई थी। दोनों परोपकारी संत थे। यही पर अब्दुल शाह ने अपना स्थान बनाया। यह स्थान सांप्रदायिक सहोदर व कौमी एकता की अनूठी मिसाल है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हुई हमारे जो नीचे है मंदिर उसकी बात। हमने ये भी पढ़ा था ना कि ऊपर भी पहाड़ पे कुछ है। तो हम अब ऊपर वाले पहाड़ पे आते हैं। ऊपर पहाड़ पे हमको दो चीजें दिखती है, पहली एक हमारे मौनी बाबा की गुफा और दूसरी एक मजार या मस्जिद जिसका नाम है अब्दुल शाह रहमतुल्ला अलैह सूफी संत मजार। यहाँ पे यह माना जाता है कि जो हमारे अब्दुल शाह थे वह टकरा गए थे एक बार हमारे मौनी बाबा से, तो उन दोनों की बात हुई और उन दोनों में वार्तालाप हुआ। और यह है माना जाता है कि जो दोनों बाबा थे वह परोपकारी थे, यानी वह अपना जीवन खुद से ज्यादा दूसरों की सहायता के लिए जीते थे। जैसे कभी कभी आप कुछ लोग देखते नहीं है जो खुद का जीवन दूसरों के लिए जीते हैं, उनको कुछ चाहिए तो उनकी सहायता कर रहे हैं, फिर उनके पड़ोसी की सहायता कर रहे हैं, पर खुद के लिए कम करते हैं। वैसे बाबा थे वो दोनों। और यह जो मजार है या मस्जिद है और जो गुफा है, यह मिसाल है दोनों एकता की और कौमी प्रेम की। जहाँ पे हमारे देश में हिंदू मुसलमान में इतने झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे इस स्थान पे एक मजार यानी मस्जिद और एक हिंदू बाबा की गुफा बड़े ही प्रेम से, बड़ी ही एकता से अभी भी रह रही है और लोगों में प्रेम बांट रही है। अब हमारी है अगली लाइन जो है, मचकुन सरोवर के पास स्थित द्वितीय ताल पर पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक स्थान है। यह तल राज्य सरकार द्वारा नौकायन के लिए विकसित किया जा रहा है। मचकुन के पास स्थित मौनी बाबा की गुफा आज भी पर्यटक व लोगों को आकर्षित करती है। इस स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष स्काउट गाइड NSS सांस्कृतिक धरोहर सेवा विहीन एवं अन्य स्वयं सेवा के श्रमदान करते हैं। धौलपुर नगर परिषद नियमित सफाई कराती है। ऐसे स्थानों पर गंदगी फैलाने से हमारी विरासत को हानि पहुंचती है। यह आयोजित मेले व कव्वाली में सभी धर्म व संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मेले के दिन नगर में बड़ी उत्साह दिखाई देती है। मचकुन सरोवर के नैसर्गिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व व प्रकृति की घटा को देखते हुए इसे पूर्वांचल का पुष्कर कहा गया है। इन लाइनों में यह पता चलता है कि जो हमारा मचकुन जगह है बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे सौंदर्य इतना ज्यादा है, 40 घाट है, पहाड़ी है, हरियाली है, मंदिर है, सब कुछ है। तो यह जगह बहुत ज्यादा सुंदर है और इस जगह की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जो NSS है या कॉटन गाइड है और जो लोग वहाँ पे इस जगह को देखने आते हैं, वह दान पेटी में कुछ पैसे देके जाते हैं, जिसकी सहायता से वहाँ की जो सरकार है इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती है। यही नहीं, वहाँ की सरकार इस जगह की सफाई समय समय पर करवाती रहती है ताकि यह जगह और सुंदर और साफ बने। परंतु बच्चों, सिर्फ सरकार की ही तो जिम्मेदारी नहीं है सफाई, है ना? तो जब भी हम कहीं पे जाए जो बहुत सुंदर जगह है, चाहे प्राचीन हो या नहीं हो, कचरा कभी नहीं फैलाना चाहिए। और इस पार्ट में भी यही कहा गया है कि इस जगह पे भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि कचरा फैलाने से जो इस जगह की इतनी खूबसूरती है वह खराब होगी और हमें ही जाने का मन नहीं करेगा। तो बच्चों, हमें कहीं पे भी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि अंत में वही कचरा हमें ही नुकसान करता है। इसी के साथ आज का पाठ खत्म होता है। हम मिलेंगे कल। बाय बच्चों।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।